ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज कोशिश करेंगे कि प्रवचन हिंदी में हो। सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि यथानुरूप यथारूप आचार्यों के अनुगत्य में कुछ आपको प्रस्तुत कर सकूँ, आप सबकी प्रसन्नता के लिए और मेरे शुद्धिकरण के लिए। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम षष्ठम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 22। एतावान् एव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृतः भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः। एतावान् एव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृतः भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणाधिभिः। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृतः भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारंग भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की एतावान् इतना एवा निस्संदेह लोके अस्मिन् इस भौतिक जगत में पुंसाम जीवों का धर्मः धार्मिक सिद्धांत परः दिव्य स्मृतः मान्यता प्राप्त भक्तियोगः भक्तियोग या भक्ति भगवति भगवान के प्रति देवताओं के प्रति नहीं तर उसका नामा पवित्र नाम का ग्रहण आदि भी कीर्तन इत्यादि। अनुवाद कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें और मेरे बात दोहराएं। भगवान नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण करें। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, धर्मम भागवतम, असली धार्मिक सिद्धांत भागवत धर्म है, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में या भागवत के प्रारंभिक अध्ययन भगवत गीता में हुआ है। यह सिद्धांत क्या है? भागवत का कथन है धर्मा प्रोचित कैटवोत्र। श्रीमद् भागवत में ठगने वाले धार्मिक प्रणालियां नहीं है। भागवत की हर वस्तु भगवान से संबंधित है। भागवत में और भी कहा गया है, सवै पुंसाम परो धर्म युतो भक्तिरधोक्षजे। परम धर्म वह है जो अपने अनुयायियों को यह सिखाता है कि उन भगवान से कैसे प्रेम किया जाए जो व्यावहारिक ज्ञान की पहुंच से परे हैं। ऐसी धार्मिक प्रणाली तन्नामक ग्रहणा यानी भगवान नाम के कीर्तन से प्रारंभ होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान नाम का कीर्तन करने तथा भाव में आकर नृत्य करने के बाद मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप भगवान की लीलाओं तथा भगवान के दिव्य गुणों को देखता है। इस तरह से वह भगवान की स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता है। भगवान किस तरह भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, किस तरह जन्म लेते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, इनके विषय में मनुष्य जान तो सकता है, किंतु तब जब वह भक्त करे, जब वह भक्ति करे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भक्त्या मम अभिजानाति, एकमात्र भक्ति द्वारा मनुष्य भगवान के विषय में सब कुछ समझ सकता है। यदि कोई सौभाग्यवश इस तरह से भगवान को समझ लेता है तो परिणाम निकलता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीति, अपना शरीर त्यागने के बाद फिर उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत वह भगवत धाम लौट जाता है। यही चरम सिद्धि है। इसीलिए भगवत गीता में 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद से। हमने सोचा कि विश्व हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ का जो महोत्सव चल रहा है उसी उपलक्ष्य में इस श्लोक की चर्चा की जाए। पता नहीं इसका चर्चा हो गया है कि नहीं पहले कक्षाओं में नहीं। तो वैसे ये भी कारण था कि परसों राधा पार्षद मंदिर में इसी श्लोक पे कक्षा देने की सेवा प्राप्त हुई थी, तो फिर दोबारा ज़्यादा प्रिपेयर करने की क्षमता नहीं था, उस क्षमता नहीं रखता हूँ, समय भी नहीं था, तो सोचा कि उसी के ऊपर दे दूँ। प्रयत्न करूँगा कि उससे अधिक कुछ और बोलने का, जिससे आप लोगों को ठीक लगे। कलौत नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरिः, माध्वाचार्य बोलते हैं हमारे श्रीपाद माध्वाचार्य, कलौत नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरिः। जैसे कि हम बताते हैं कलौत हरि कीर्तना, तो कलयुग में नाम मात्रेण और कुछ उपाय है ही नहीं, पूज्यते भगवान हरिः, भगवान हरि की पूजा यदि करनी है, भक्ति करनी है, तो सिर्फ नाम मात्रेण। और अन्यत्र श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद बोलते हैं कि परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में, उसी हरिनाम के बारे में बोलते हैं परमम अमृतम एकम, उसमें सर्वत्र कहीं भी देखो उस हरिनाम में अमृत ही अमृत है। परमम अमृतम एकम एकम जीवनम भूषणम में, मेरा जीवन ही वही है और मेरे लिए सबसे बड़ा आभूषण भी वही है, मेरे जीवन का, मेरे भक्ति का। तो परमम एकम परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में, ये बृहद भागवतामृत में इसका वर्णन आता है। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी भी अन्यत्र बताते हैं कि उस श्लोक एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, श्लोक याद आएगा तो बताएंगे बाद में, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे तो जैसे श्रीपद आइंद्र प्रभु बताते थे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। श्रीपद आइंद्र प्रभु ने किसी संदर्भ में बताया, असली में अगर परम शरणागति चाहिए तो श्री भगवान के, तो वो क्या होना चाहिए, नामेकम शरणम व्रज, मामेकम नहीं, सिर्फ हरिनाम ही वो है जिनका हम शरण ले सकते हैं श्री भगवान का। और सुखदेव गोस्वामी स्वयं बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है अजामिल की कथा से हमें मिलती है, कि अजामिल ने मृत्यु के आसन मृत्यु के क्षण पर अपने पुत्र का नाम उसकी तरफ संकेत देते हुए भगवान नाम का उच्चारण किया। वैसे तो अपने पुत्र नारायण का नाम उच्चारण कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको भगवत भक्ति प्राप्त हो गई, भगवत सानिध्य मिल गया, विष्णु दूतों का दर्शन भी मिल गया। अब आगे जाकर हरिद्वार में जाकर उन्होंने भक्ति योग का अनुशीलन किया और बताया गया कि फिर वैकुंठ प्राप्ति हो गई उनकी। तो वो स्वयं अजामिल बताते हैं आगे आने वाले श्लोकों में कि मैं इतना पापी व्यक्ति हूं कि ये हरिद्वार में जाके आगे बताते हैं, मैं इतना पापी व्यक्ति हूं और अब जबकि मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है, अब जबकि अवसर प्राप्त हुआ है विष्णु दूतों की कृपा से, अब मैं अपने मन और इंद्रियों का दमन करूंगा और भक्ति योग में संलग्न हो जाऊंगा, ताकि दोबारा मुझे इस पाप वृत्ति का संग ना करना पड़े और मेरा पतन ना हो। इस प्रकार उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। श्रील प्रभुपाद आगे आने वाले श्लोकों में एक तात्पर्य में बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत के जितने भी भक्त हैं उनको इसी प्रकार का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का हमें दृढ़ता पूर्वक जप और श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। तो यहां पे बताया गया कि इसी प्रकार के इस पद को हमें भी अपनाना है दृढ़ता पूर्वक। उत्साह निश्चय धैर्य, उसमें निश्चय कि हो सकता है कि बहुत उत्साह है, हमें बहुत जल्दी परिणाम मिले भक्तियोग से या भक्तियों की प्रक्रिया से, या हो सकता है कि हम बहुत ही धैर्य के नाम पे बहुत ही ढीले चल रहे हैं कि जो भी है चलेगा, कि भारत की एक बहुत बहुत बड़ी विशेषता है चलता है ये मनोवृत्ति। तो भक्ति में ये आना नहीं चाहिए। भक्ति में डिले होना ठीक है लेकिन ढीले होना ठीक नहीं है। इसलिए शायद ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए करके बीच में निश्चय बताया गया कि ज्यादा उत्साह ना हो, जरूरत से ज्यादा हम कुछ गलत काम भी करना बैठे भक्ति की विधियों में, इसमें हमें दृढ़ता होनी चाहिए कि भक्तियों की अनुशीलन में अपराधों से भी हमें मुक्त रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और धैर्यता के नाम पे हम दुरुपयोग ना करें हमें जो समय मिल रहा है भक्ति योग की जो सुविधा मिल रही है इसका। तो इसलिए हमें निश्चय होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हो सकता है इसलिए आगे बताया गया तत्त कर्म प्रवर्तनात्, निश्चय के साथ सभी कृत्यों को उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार होना चाहिए स्थल काल और परिस्थिति के अनुसार। जैसे कि बताया गया कि हरिनाम का ध्यान पूर्वक श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। वैसे तो अजामिल के जीवन से हमें उदाहरण मिलता है कि ध्यान पूर्वक जब ना भी हो, अपराध युक्त जब हो। वैसे तो बताया गया कि अजामिल ने जो जप किया था, जो उच्चारण किया था नारायण नाम का, वो संकेत नामाभास है। नामाभास अर्थात जो एक तो होता है अपराध युक्त नाम, जहां पर अधिक से अधिक नामसिक्या साधक उसी स्तर पर रहते हैं, अपराधों के साथ जप करता रहना, जिसको बोलते हैं ऑफेंसिव चैंटिंग स्टेज अंग्रेजी में, और आगे क्लेंजिंग स्टेज जो बोलते हैं जिसका नामाभास बोलते हैं, जिसमें भी दो तरीके के हैं, एक है श्रद्धा नामाभास और दूसरे तरीके का, उसके अंदर अलग अलग विभाजन है। संकेत नामाभास, स्तोभ नामाभास, परिहास नामाभास, हेल नामाभास, अलग अलग प्रकार के हैं। तो उतना विशद वर्णन देने का समय नहीं है, फिर भी इतना समझ लें कि संकेत नामाभास जिसका यहां पे चर्चा कर रहे हैं, अजामिल के जीवन से उसका वर्णन मिलता है। वैसे तो संकेत दे रहे थे अपने पुत्र नारायण की तरफ। यहां तक बताया गया कि प्रभुपाद अन्यत्र बताते हैं कि वो तो अपने पुत्र के बारे में सोच रहे थे, और अजामिल जो है विख्यात पापी थे। प्रभुपाद इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ही वाज अ फेमस सिनर, ऐसे नहीं कि कुख्यात, विख्यात पापी थे, तो सामान्य पापी नहीं थे, और श्रद्धा के साथ उच्चारण नहीं कर रहे थे भगवान के नामों का। एक तो श्रद्धा के साथ नहीं कर रहे थे, दूसरा भगवान के तरफ इंगित नहीं कर रहे थे। संकेत किसकी तरफ हो रहा था? पुत्र की तरफ। दूसरा मृत्यु के समय कर रहे थे, पीड़ित अवस्था में, और अत्यंत पापमय जीवन बिताने के बाद कर रहे थे। तो आचार्य बताते हैं ये चार चीजों का हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए। यदि व्यक्ति इतना पापी होते हुए भगवान का नाम उच्चारण कर सकता है, तो फिर जो निष्पाप व्यक्ति है वो किस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण कर सकता है, किस प्रकार उसको परिणाम मिलेंगे इस नाम का उच्चारण करने से, पहली बात। दूसरी बात, मृत्यु के समय, आसन्न मृत्यु के समय कोई व्यक्ति इस प्रकार उच्चारण कर रहा है अचानक, तो जीवन भर कोई व्यक्ति जीवित अवस्था में भगवान का जप करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। तीसरा, कोई व्यक्ति बिल्कुल श्रद्धा विहीन स्थिति में, एक प्रकार से संबंधित है कि मृत्यु के समय कर रहा है, श्रद्धा विहीन स्थिति में कर रहा है, तो कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ यदि नामाभास की स्थिति पे पहुंच सकता है तो उसके लिए क्या होगा। और आगे बताया गया कि कोई व्यक्ति अगर अपने पुत्र को संकेत देते हुए भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है और उसको इतना दिव्य परिणाम प्राप्त हो रहा है, तो यदि कोई प्रत्यक्ष रूपेण भगवान को, भगवान के सामीप्य में या भगवान के सानिध्य को चाहते हुए भगवान नाम का उच्चारण करता है तो उसको क्या परिणाम मिलेंगे, तो सोचने वाली बात है हमारे लिए। वैसे तो अजामिल खुद बताते हैं कि क्योंकि मैंने पूर्व काल में, भूतकाल में, हो सकता है कुछ उनके अपने संस्कार हैं, उनको जो सुकृति प्राप्त हुई थी अपने पूर्व काल में कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, और ये ऐसा समय हुआ था कि बहुत पहले की बात है, कई कई सालों पहले की बात है, जब श्रद्धा और अच्छे स्तर पे थी लोगों के हृदय में, उस स्थिति में जब ब्राह्मण कुल में जो पैदा होता है, हालांकि अभी तो कलह शूद्र संभव, लेकिन तब कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा होता है तो वो ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण था, उसका कुल भी ऐसा ही था, तो उस कुल में पैदा होने के बाद स्वाभाविकता से उस किसी भी व्यक्ति को कई प्रकार के संस्कार मिल सकते हैं और सुकृति मिल सकती है। तो अजामिल बता रहे हैं कि स्वयं कि एक व्यभिचारी का पालक मेरे जैसा अस्वच्छ व्यक्ति या ऊंची व्यक्ति, यदि मैंने पूर्व काल में भक्तियों का अनुशीलन नहीं किया होता तो मुझे कैसे इस प्रकार का अवसर प्राप्त होता कि मैं साक्षात वैकुंठपति का नाम ले पाता, वो भी आसन मृत्यु के क्षण पे। आचार्यगण, वर्तमान आचार्यगण भी बताते हैं कि अन्यत्र कि एक बार जब कुछ साधु संतों का संग मिला था उस व्यभिचारी स्त्री को, जो कि बाद में जाकर अजामिल की पत्नी बनी थी, पर पहले तो पूजा सामग्री एकत्र करने के लिए जब वन में गए थे तब व्यभिचारी को अपने ग्राहक के साथ संबंध रखते हुए दर्शन किया। एक होता है दर्शन पवित्र करे, एक होता है दर्शन अपवित्र करे, तो इनकी स्थिति में दर्शन अपवित्र करे, क्षण भर में उनकी चेतना कलुषित हो गई। तो एक समझ सकते हैं कि साधकों के लिए कितनी बड़ी शिक्षा है कि जब अजामिल जैसा व्यक्ति इतने सालों पहले, जबकि श्रद्धा का स्तर बहुत ऊंचा था, ब्राह्मणों का स्तर ऊंचा था, मात्र एक इस प्रकार के दुर्व्यवहार के दर्शन से उनकी चेतना इतनी कलुषित हो सकती है, तो कलयुग में जो कि इतने साधन है कृष्ण भावनामृत से हमें दूर कराने के लिए, तो फिर हम उनका अगर संग करेंगे, उन सुविधाओं का लाभ उठाएंगे कृष्ण से दूर होने के लिए, तो फिर हमारा क्या होगा। तो इसलिए बोलते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो हमारे लिए सतर्कता हमेशा होनी चाहिए, विशेष करके जो ब्रह्मचर्य आश्रम के निवासी भक्त हैं। श्री श्राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रमाय गौरनिताय श्रील प्रभुपाद की जाय। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा है, इस प्रकार से अजामिल के जीवन से हम ले सकते हैं जो कि भक्तियों के साधक हैं। तो शीला प्रभुपाद बताते हैं कि दृढ़ संकल्प के साथ हमें भगवत नाम लेना चाहिए ताकि इस प्रकार के एक होता है जैसे इंजीनियरिंग में, आपने से कई लोग इंजीनियरिंग करके आए हैं, इंजीनियर का इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त करके, तो एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आता है प्रोडक्शन में, एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एक होता है क्यूरेटिव मेंटेनेंस। क्यूरेटिव मेंटेनेंस से एक बार जब खराब हो जाता है मशीन या उसका कोई पुर्जा तो उसको मेंटेन करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं और ऑयल वगैरह डालते हैं। ताकि दोबारा ना हो। एक होता प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो कि पहले ही ऐसा कुछ कार्य करें उसको मेंटेन करें कि दोबारा वो ब्रेकडाउन ना हो या पहले भी ब्रेकडाउन ना हो। तो उसी प्रकार हरिनाम जो है, क्योंकि साधन और साध्य दोनों है, हमें पाप वृत्ति से बचाता भी है और यदि संभवतः हमारा पतन हो जाए या पतन की स्थिति पहुंच जाए तो उस स्थिति से भी हमको हमारा उद्धार प्रदान करने में वो सक्षम है हरिनाम। तो फिर यदि इतना महत्वपूर्ण है हरिनाम, जैसे दसवां नामापराध बताते हैं कि भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, तो फिर ये बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है ये अपराध, कि इतना सब सुनने के बाद भी फिर क्यों हम गलत काम करते हैं। जैसे अर्जुन पूछते हैं, ना चाहते हुए क्यों, अतः कहना प्रयत्तो अयम पापम चरति पुरुष अनिश्चन अपि वार्ष्णेया, ये भी बताते हैं ना चाहते हुए क्यों हो रहा है बलादिव नियोजित, जैसे जानबूझकर जबरदस्ती लगाया जाता है, फिर भी हम भक्ति में आने के बाद भी इतना सुनने के बाद भी क्यों ऐसा होता है। अजामिल की स्थिति अलग थी कि आचार्य बताते हैं कि जैसे ही साधु संत आए थे उनके उनके असान्निध्य में उनके घर पे आए थे, वैसे तो किसी ने हंसी मजाक में दे दिया जगह बता दिया कि वो वहां पे अजामिल रहता है, सभी अतिथियों का बहुत सत्कार करता है। वैसे तो अजामिल बहुत विख्यात है, प्रभात बता दे विख्यात पापी हैं, तो ऐसा सब करने का कोई भी उद्देश्य नहीं होगा उनके हृदय में। फिर भी किसी ने भी भेज दिया, उन साधु संतों ने जब इनकी पत्नी जो कि पहले व्यभिचारी थी वेश्या थी, तो उनको बताया कि आप गर्भस्थ हो, आपके शिशु का नाम आप नारायण रख सकते हो। और जब उन्होंने ये बात अजामिल को बताई तो अजामिल ने बताया हाँ बेटे का नाम तुम नारायण रख सकते हो। आचार्य बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने ये बात बताई कि नारायण रख सकते हो तो वैकुंठ में स्वयं नारायण ने सोच लिया ये तो मेरा भक्त है। उसी क्षण में उन्होंने जितने भी पाप किए थे वो सब नष्ट हो गए, सारे पाप क्षय हो गया सारा पूर्णतया। और बताया गया कि विष्णु दूत जब आगे प्रकट हुए उनको बचाने के लिए, वो क्यों आए, आए इसलिए बताया गया कि एक जगह तो बताया गया कि संकेत नामाभास है, उनको पता नहीं था कि भगवान का नाम है। अन्यत्र आचार्य ये भी बताते हैं कि जैसे ही पहले नाम लेते हुए उनको पता नहीं था कि ये भगवान का नाम है, उन्होंने अपने तो पुत्र को संकेत देते हुए नारायण ऐसा बुलाया था, नारायण ऐसे बुलाया तो बताया गया कि अचानक उनको स्वयं को ये आभास हो गया अरे ये तो भगवान का नाम है। और जैसे ही उन्होंने समझ लिया या सोच लिया कि ये भगवान का नाम है, बताया गया कि विष्णु दूत प्रकट हो गए और ये बताया गया कि घर पे जैसे ही पुत्र का नाम नारायण रखा और बात बात पर बच्चे को पुकारते थे, इतने आसक्त हो गए थे बच्चे से, नारायण इधर आओ, नारायण वो लाओ, नारायण मेरे जूते लाओ, नारायण मेरे कपड़े लाओ, मुझे जल लाओ, इधर आके बैठ जाओ, खेलो मत नारायण, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, नारायण का नाम लेते रहते थे। आचार्यगण बताते हैं कि वैकुंठ में वैकुंठवासी समझ रहे थे अरे ये तो संकीर्तन कर रहा है। तो सोचिए इस स्थिति में ऐसे नहीं कि वो अज्ञान में सोच रहे हैं, वो क्या है मासूम लोग हैं वैकुंठ में बेचारे, उनको मालूम नहीं हर हाल में किसी को वैकुंठ में घसीट के लाना चाहते हैं इसलिए वो इनको छूट दे रहे हैं, नहीं उनको पता है कि जैसे पद्म पुराण में वर्णन है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, देखा था हाँ मिला था हाँ ये है, नामापराध युक्ता नाम नामान्य महारंत्य गम अभिश्रंति प्रयुक्तानी ताने वार्त कारण चिया। तो इसका मतलब है अपराध युक्त नाम लेने से भी पाप कटते हैं, तो सोचिए कि शुद्ध नाम लेंगे तो क्या होगा। ये बताया जाता है कि नामाभास जो कि श्रद्धानामा भास के स्तर पे शुद्ध भक्ति भी मिल सकती है, भगवत प्रेम भी मिल सकता है, अपराध युक्त जप से सब कुछ मिल सकता है, सिर्फ भगवत प्रेम नहीं मिल सकता। तो ये तो ऐसा है जिसे अन्यत्र वर्णन आता है, छठे स्कंद में ही देवतागण ने, इंद्रदेव ने बृहस्पति का अपमान किया था। जिस सभा में आए थे बृहस्पति, तो उनका अपमान कर लिया, उनको सम्मान, उचित सम्मान नहीं दिया, तो उनको और अपराध करने से बचाने के लिए और शिक्षा प्रदान करने के लिए बृहस्पति ने क्या किया, सभा घर जो है त्याग दिया, सभा गृह को त्याग दिया और एक प्रकार से अप्रकट हो गए कि ढूंढने के बाद भी इंद्रदेव को नहीं मिले। वैसे तो देवताओं की खासियत यह है कि गलतियां तो करते हैं सकाम भक्त होने के नाते, लेकिन तुरंत उनको आभास हो जाता है कि हमने गलती की है। यह दैवी प्रकृति का लक्षण। आसुरी प्रकृति के लोग गलतियां करते भी हैं तो भी मानते नहीं है, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानते हैं। तो ये तो परम धर्म की बात चल रही है, वो परम धर्म जिसके उच्चारण से हरिनाम, जिसके उच्चारण मात्र से नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से लीला, लीला से परिकर वैशिष्ट और साज सज्जा के बारे में व्यक्ति अवगत हो जाता है, उसको आभास मिल जाता है, उसके बारे में यहां पर वर्णन है कि नाम लेने से फिर रूप के बारे में, गुण के बारे में, लीला के बारे में आभास मिलता है। तो देवतागण ने क्या किया, पहले तो गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने बताया वैसे तो तुमने गलत किया है, गुरु का अपमान किया है, अभी तुम विश्व रूप के पास जाओ जो कि जिनके पिता त्वष्टा हैं और माता एक राक्षसी है, लेकिन वो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेना, वो दोनों के पक्ष में है, वैसे देवता असुर दोनों के। तो विश्वरूप ने फिर बताया गया कि उन्होंने पूजा करी, उन देवताओं को शक्ति मिल गया और फिर आगे जाकर वो असुरों को हरा भी पाए। लेकिन एक बार इंद्र को जब पता चला कि विश्वरूप छुप छुप के न सिर्फ देवताओं के लाभ के लिए बल्कि असुरों के लाभ के लिए भी कुछ आहुति दे रहे हैं, तो क्रुद्ध हो गए और पहले ही चेतावनी मिली थी ब्रह्मदेव से, फिर भी उन्होंने अपने तलवार लेकर विश्वरूप के बता गया, उनके तीन सिर थे, चार सिर थे, तीन, तो तीनों सिरों को काट डाला और क्षण में वध कर दिया। छोरी के ऊपर सीना जोरी, एक तो पहले गुरु को, गुरु का वध किया, उससे बचने के लिए जो गुरु प्राप्त हुए थे, गुरु का अपमान करने के बाद जो गुरु प्राप्त हुए थे उनका न सिर्फ अपमान किया, उनका वध भी कर दिया। पहले तो कुछ शब्द भी बोले गुरु, ऐसा नहीं कि प्रेम से जाके गला काट दिया, पहले कुछ रुष्ट शब्द भी बोले, तो अपमान भी किया और वध भी कर दिया। तो अब स्थिति क्या बोलते हैं इसको, अधम से अधमतम हो गई। तो फिर दोबारा गए किसके पास, हाँ, अभी उसके पहले एक छोटी सी घटना घटी थी। त्वष्टा जी जब पता चला उनको कि अपने पुत्र, उनके सुपुत्र का वध हो गया इंद्र के हाथों, तो उन्होंने एक यज्ञ किया, आहुति देते हुए बताया कि उनको, वो बताना तो चाहते थे कि इंद्र का शत्रु या इंद्र को वध करने वाला पैदा हो। तो संस्कृत जानने का या ना जानने का, या जानने के बावजूद कुछ समस्याएं होती हैं कि बताते बताते उन्होंने ये कह डाला, भगवान का ही आयोजन है ये, उन्होंने ये कह डाला कि इंद्र से जिसका वध होगा वो पैदा हो, पूरा उल्टा अर्थ हो गया। तो फिर उस यज्ञ कुंड से एक बहुत बड़ा असुर पैदा हुआ और उसका शरीर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, काला शरीर था पहाड़ की तरह, और तांबे की तरह उसके जो लाल केश थे उसके, और हाथ में एक त्रिशूल भी था। इतना बड़ा बन गया, विस्तृत होने लगा, इसलिए उसका नाम वृत्रासुर बन गया। ये वृत्रासुर तो वैसे पूर्व जन्म में चित्रकेतु थे, महाराज चित्रकेतु जो कि शुद्ध भक्त थे, भगवान की लीला के कारणवश उनको वृत्रासुर का शरीर मिला था। फिर भी भगवान की विशेष कृपा से वो भगवत स्मरण सदैव रखते थे। लेकिन जब ये पता चला कि विश्वरूप का वध करते हुए हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और वृत्रासुर पैदा हो गया और उसको हराना बहुत मुश्किल है, तो भगवान विष्णु के पास गए। इमरजेंसी सिचुएशन में उनके पास जाते हैं, आपातकालीन स्थिति में, बाकी सब कुछ जब हो जाता है तो। इसलिए आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी बोलते हैं। आर्ता एक प्रकार से सकाम भक्ति का स्तर है। आर्त स्थिति में भगवान के पास गए, अगर देवतागण इतना बढ़िया प्रेयर करते हैं ना, प्रार्थना, सोच सकते हैं कि बिल्कुल लगेगा कि शुद्ध भक्ति के धरातल पर हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य व्यक्ति हमारे पास आते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जैसे भगवत गीता में बताया गया, कामैस्तैस्तैर हृदय ज्ञाना प्रपद्यन्ति अन्य देवता। हाँ, अन्य देवता वो स्वयं बताते हैं, लेकिन वो क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो तो इस प्रकार है कि सागर को पार करने के लिए कुत्ते की पूंछ को पकड़ लें कोई, उसका सहारा लें, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। असली में तो आप ही सहायता करते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, नायम जनों में पितरोहि नृसिंह, कि सागर में डूबने वाले व्यक्ति को नाम नहीं बचा सकता, जो पुत्र हैं या पुत्री हैं उनको मां बाप नहीं बचा सकते, ये वहम में ना रहे। दवाई किसी को नहीं बचा सकती, वैद्य भी नहीं बचा सकता। आप डॉक्टर के अस्पताल में जाओगे, आप देखोगे आई ट्रीट ही क्योर्स, कुछ श्रद्धालु डॉक्टर है उनके अस्पताल में आपको मिलेगा। मैं चिकित्सा करता हूं, लेकिन उनको बीमारी कौन दूर करता है, भगवान। और इस श्लोक में बताया गया तन नामक ग्रहणादि भी, कि कीर्तन जो है इतना सशक्त है, कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति की विद्या इतने सशक्त है कि वो सर्वोच्च धार्मिक पद्धति है अथवा तत्व है। और देवता जैसे भगवान के पास जाके ये प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान ने बताया, एक प्रकार से भगवान थोड़ा इरिटेट हो गए, बता सकते हैं कि आप इसके लिए आए मेरे पास, मैं तो आपको वैसे भी बचाऊंगा, आप ये भौतिक कामना लेकर मेरे पास क्यों आए हो। यदि शुद्ध भक्ति मांगते हैं, भगवत प्रेम मांगते हैं तो अलग बात थी, आप इसके लिए मेरे पास आए हो। वैसे ही भगवान नाम जो है दिव्य नाम है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्णो शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वा नाम नामिनः, भगवान से अभिन्न होने के कारण वो सब कुछ दे सकता है, सब कुछ प्रदान कर सकता है। लेकिन उस भगवान नाम के पास जाकर हम भौतिक कामनाएं करें, जो मुझे परसों जब प्रवचन देना था अचानक दिल्ली मंदिर में, तो बहुत ज्यादा तनाव में था क्योंकि मैं भगवान नाम के बारे में क्या बोलूंगा, वैसे तो 16 माला मुश्किल से रगड़ रगड़ के हो रही है, घसीट घसीट के कर रहा हूं। जैसे कि हमारे मित्र बोलते थे, सुबह जो माला करते हैं वो राउंड्स होता है, शाम को वो करते हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है। तो कुछ शायद किसी वर्तमान आचार्य ने भी बताया होगा कैसे आया, तो सोचा मैं क्या बोलूंगा हरिनाम के बारे में, तो मैं सोचा कि मैं नाम प्रभु से प्रार्थना करूंगा, हृदय से प्रार्थना करूंगा, समर्पित भाव से प्रार्थना करूंगा, संलग्नता से निवेदन करूंगा कि मुझे आप शक्तिपात करो कि मैं कुछ बोलूं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके गुणगान में। मैं हे नाम प्रभु, मैं प्रार्थना किया प्रार्थना किया, अचानक एक भक्त कुशन लाया साइड से, मैंने बताया नहीं कुशन नहीं चाहिए अभी। फिर कुछ सब 2 मिनट बाद एक भक्त एक बॉटल लाया पानी का, बोला प्रभु जी ये आपका बॉटल तो नहीं है। नहीं मेरा तो नहीं, मेरा तो खो गया। नहीं फिर भी आप पी लीजिए इसमें से पानी। मैंने कहा नहीं नहीं अभी दो मिनट बाद दूसरा भक्त दूसरा बॉटल लाया, बोला कि प्रभु जी आपके लिए जल लाया हूं। तो मैंने कहा कि ये तो मेरा बॉटल नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं आप फिर भी इसमें से पानी पी लीजिए, उसने भी बताया। तो मैं सोचा यार मैं तथाकथित संलग्नता पूर्वक जो जप करता हूं उसका परिणाम ये है, लाभ पूजा और प्रतिष्ठा भुक्ति नाम, तो मेरा क्या हाल होगा। तो इसलिए हमें जैसे श्रील प्रभुपाद बताते थे कि उनकी सफलता का रहस्य क्या है, आई वॉज इंट्रोस्पेक्टिव, वो आत्मान्वेषी थे, आत्मावलोकन करते थे, और हमें इंडिपेंडेंटली थॉटफुल भी होना चाहिए, स्वतंत्र चिंतक। इसका मतलब नहीं कि कि परंपरा के मार्ग से हम विचलित हो जाएं, स्वतंत्र चिंता का अर्थ ये नहीं है, स्वतंत्र चिंतन का अर्थ ये नहीं है, स्वतंत्र विचार का अर्थ है कि तत्व के अंतर्गत जो मार्ग बताया गया उसकी जो विशेषताएं हैं उनको कैसे कार्यान्वित करें। प्रिंसिपल इज गिवन बट द डिटेल्स हैव टू बी वर्कड आउट बाय आवरसेल्फ, स्वयं के लिए। यदि मैं समर्पित भाव से दृढ़ संकल्प लूं जैसे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए, तो वह कैसे बोलूं या कैसे लूं मैं वो संकल्प और कैसे किया जाए इसके बारे में। तो बताया गया कि ये यहां पे भी बताया गया तन्नामक ग्रहण आदि भी। तो एक वर्तमान आचार्य बताते हैं कि राहु और केतु जब चंद्रमा पे ग्रहण लगाते हैं वो तो कुछ समय बाद एक दिन बाद खत्म हो जाता है, लेकिन जब नाम का ग्रहण लग जाता है जिह्वा पे एक बार तो फिर उससे बच नहीं सकते। ये नाम का ग्रहण जब जिह्वा पे लग जाता है तो वो ग्रहण कभी नहीं निकल सकता। इसलिए रूप गोस्वामी पाद लाखों जिह्वाएं मांगते हैं, मुझे लाखों जिह्वा दीजिए जिससे कि मैं आपके नामों का उच्चारण करूं, क्योंकि जैसे ही नामों का मैं उच्चारण करता हूं तो स्वयं भगवान आके नृत्य करते हैं मेरे जिह्वा पे, ऐसा रूप गोस्वामी बताते हैं। लेकिन हमारे लिए थोड़ी समस्या भी है, लाखों जिह्वा होंगे तो सोचो कि एक जिह्वा से इतनी प्रजल्पा कर रहे हैं, लाखों जिह्वा से कितने प्रजल्पा करेंगे। तो इसलिए अभी जितना है उतना ठीक है, एक जिह्वा है उसका सदुपयोग करें, जो सुविधा मिली है उसका दुरुपयोग ना करें। जैसे कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के भक्तों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं मंदिरों में, जिससे कि वो अपने मन और इंद्रियों का दमन करते हुए भगवान नाम का दृढ़ संकल्प के साथ जप करने का जो है प्रण ले सकते हैं। तो हमें आत्मान्वेषण करते हुए सोचना चाहिए क्या मुझे इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है, सच में 5-star फैसिलिटीज है। बाहर जाके पंजाब भाग में भी कहीं भी पूछ, हो सकता है पंजाब भाग में अलग स्थिति है, थोड़ा नेबरहुड थोड़ा रिच है, लेकिन अगर हम घड़ी में देखेंगे जो ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के सामने, वो जब गर्मी का मौसम है तो उनको इतना प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल पावर नहीं रहता, इलेक्ट्रिक पावर नहीं है और जल नहीं मिलता ठीक से, जल सेवा नहीं मिलती, और इस्कॉन के अंदर भक्तों को महीनों महीने मंदिर के अंदर ही रहे बाहर भी ना जाए तो कोई नुकसान नहीं है भौतिक दृष्टि से। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से श्रील प्रभुपाद बताते हैं इस हरे कृष्ण महा आंदोलन का सम्मेन सब्सटेंस अथवा सार यह है कि कृपावश हमें ना सिर्फ हरिनाम स्वयं के लिए ग्रहण करना है, अभी तो अन्यों को भी देना है, बाकी लोगों को भी देना है। जैसे कि हरिदास ठाकुर बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के घर पे उनके पिता के सामने, क्या नाम था, गोवर्धन मजुमदार ना, तो ना गोवर्धन मजुमदार ना, हिरण्य मजुमदार गोवर्धन मजुमदार, दो भाई थे। तो हरिदास ठाकुर ने बताया कि अपराध युक्त नाम से भी सारी उपलब्धियां मिल सकती हैं व्यक्ति को उच्च स्वर में जप करना चाहिए। हाँ ये बता रहे हैं कि हाँ सिर्फ भगवान नाम के दिव्य उच्चारण से व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है यदि वो पूर्ण रूपेण अपराध विहीन जब कर भी नहीं सकता, अपराध रहित जब कर भी नहीं सकता पूर्ण रूप में ना, फिर भी उसको लाभ मिलेगा। तो इसे हमें सकारात्मक दृष्टि से लेना चाहिए कि यदि अपराध रहित जब ना करें तो भी लाभ मिलता है, तो अपराध रहित जब करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा, यह सोचना चाहिए। तो श्रील भूरिजन प्रभु जो कि वर्तमान आचार्य हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखा है जपा, उसमें वो पांच चाबी बताते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कितने लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोग हैं। वैसे पंजाब भाग में बहुत समस्या है, कोई भी बुक पढ़ के भी आके पूछते हैं, सबने पढ़ लिया होगा पहले, तो फिर भी मुझे ये बहुत उपयोगी लगा, स्वयं के लिए भी मैं अनुशीलन करना चाहता हूं इन पांच, ये जो पांच चाबियां हैं उनके बारे में। पहली चाबी है हरे कृष्ण का जप करो हर हाल में, हाथ में माला हो ना माला हो। हो सकता है कि सुबह सोलह माला करने के बाद कई लोगों को बहुत व्यस्तता रहती है सेवा में, इसलिए माला वो आश्रम में रख के या घर पे रख के बाहर सेवा में व्यस्त हो जाते हैं। पॉजिटिवली बता रहे हैं अभी, तो भी बताया गया कि हर स्थिति में जब भी अवसर मिले स्वयं को ये प्रशिक्षित करते रहना चाहिए कि हरिनाम लिया जाए, क्योंकि बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग के ऊपर से गिरता है, उसका पैर टूट जाता है, या कोई लाठी से उसको मारने के लिए आता है, क्या उसको बुखार चढ़ जाता है, इस स्थिति में भी वो भगवान का नाम लेगा तो भी वो नरक से मुक्त हो सकता है, नरक से बच सकता है। आचार्य बताते हैं, अजामिल की कथा का उदाहरण देते हैं, यमराज स्वयं की पापमय जीवन लेने के बाद संकेत नामा भास से ही, वैसे वो शब्द नहीं प्रयोग करते, लेकिन उसने अपना पुत्र समझते हुए भगवान नाम लिया, इससे ही वो पापों से मुक्त हो गया। तो फिर निरंतर जप करने में क्या समस्या है, पैर कहीं लग गया कृष्णा बोलने की आदत तो लगा सकते हैं। एक वरिष्ठ भक्त हैं दिल्ली मंदिर के, वो बताते हैं कि हर स्थिति में हमें भगवान का हाथ देखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो करते कर कैसे सकते हैं, कृष्ण और उनके नाम अभिन्न है। यहां पे भी बताया भी गया उनके कार्यकलापों के बारे में, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नहीं थी, उनके कार्यकलापों के बारे में चर्चा करने से या सोचने से भी व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो उसको हम स्मरण में कैसे लाएं, उसके लिए कम से कम स्वयं को ये आदत लगाएं कि हर स्थिति में कृष्णा बोलें। जैसे गुंडीचा मंदिर के मार्जन के समय भक्त लोग बोलते थे कृष्णा कृष्णा बोलते हुए झाड़ू देते थे, हरी हरी बोलते हुए बाल्टी लेते थे या घड़ा जो भी है। तो ये आदत हमें लगानी चाहिए, ये पहली चाबी इसको बता सकते हैं। और दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण एक चाबी है कि सिर्फ एक मंत्र का श्रवण करें, लिसन टू जस्ट वन मंत्र, क्योंकि बताया गया कि मन जो है, मन रूपी पक्षी के दो पंख हैं, एक भूतकाल और एक भविष्यकाल, इन दोनों पे मन उड़ता रहता है। अब सोचिए माना 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 माना, बोले बोले मना 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 मना, क्या है क्या आ रहा है, कहने का उद्देश्य है मन नाम का बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है, हमें इतना प्रेरित करेगा कि नाम ना लो, नाम ना लेने के लिए वो हमें प्रेरित करता है, एक प्रकार से मना हमें मना करता है नाम लेने से। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये एक मंत्र सिर्फ मेरे हाथ में है। बोलते हैं ना, यस्टरडे इज अ मिस्ट्री, यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, सो स्टे टुडे, स्टे इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट मींस प्रेजेंट, भगवान से प्रेजेंट है, ये हमारे लिए एक भेंट मिली है, उसका सदुपयोग करें। बस ये एक मंत्र है मेरे पास, जैसे कोई हो सकता है कि अभी उसके बारे में उदाहरण नहीं देंगे क्योंकि अभी समय नहीं है, तो बात यह है कि ये भी जोर ना लगाएं अपने मन के ऊपर कि सिर्फ एक मंत्र सुनना है, वो भी जोर ना लगाएं, सिर्फ सुने। जैसे श्रीला प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि मन बहुत भटकता है क्या करें, तो श्रील प्रभुपाद ने बताया व्हाट इज नीड ऑफ द माइंड, इग्नोर इट. यू नीड अ टंग टू चैंट एंड एन ईयर टू हियर. व्हाई डू नीड द माइंड, इग्नोर इट. मन को जो है क्या करो, तिरस्कार कर दो उसका. तो तीसरी बात यह है कि अपने मन को ही प्रत्यक्ष रूपे ना अपना संकल्प समझाएं और बताएं. देखो सिर्फ एक मंत्र सुनना है, सिर्फ एक मंत्र, और दृढ़ संकल्प का बहुत फायदा होता है. जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि मन को 100 जूतों से या 100 झाड़ू से मारना है. हम असली तो मारते नहीं है ना. वो सुन के आज तक किसी ने भी कोशिश किया है क्या, खुद को मारा क्या असली में? मारा नहीं मारा, हाँ या ना? क्या किया आपने? मन को बताया होगा कि चुप चुप, या मैं एक्चुअली ऐसा बोल रहा हूं, या भक्ति विश्रम माधव महाराज बताते हैं, इफ द माइंड डिस्ट्रैक्ट्स यू चैंट लाउडर देन द माइंड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. पर सोचिए किसी भी न्यू भक्त को मंदिर लाएंगे, कभी भी गलती से जपा के टाइम मत लाना. एक तो भगवान बताते हैं राजा विद्या राजा गुख्यम सुसुखम कर तुम अव्ययम, और इतने अलग अलग स्टाइल्स मिलेंगे कि व्यक्ति डर जाएगा. हरिनाम करने से इतनी इतनी तपस्या, हरिनाम करने में मैं नहीं करूंगा. जैसे कई लोग मारते भी बीच बीच में. और भक्त सिद्धांत महाराज के समय पे ब्रह्मचारी लोग चोटी को शिखा को बांध के रखते थे छत से कि नींद ना आए, गिर ना जाए. इतना क्यों करते हैं भक्त? जैसे सत्स्वरूप महाराज बोलते हैं दिस स्ट्रगल इज द प्रोसेस, ये संघर्ष ही जब की प्रक्रिया है. संघर्ष करें फिर भी, और मन को दृढ़ संकल्प अपना बताएं समझाएं. और चौथी बात, वैसे तो कारण यह है कि मन यदि बहुत तेज दौड़ता है, एक मंत्र पे जप करना है ठीक है, एक मंत्र का सुनना है, फिर भी तेज दौड़ता है, तो एक नाम पे ध्यान रखें, बस एक ही नाम, हरे या कृष्णा या रामा, ये भी चलेगा. क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्णा है, मंत्र कृष्णा मंत्र चिंतामणि कृष्णा नहीं है. एक एक नाम वो सक्षम है. आपने अपने नामों में अप्राकृत नामों में समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी है. हर एक नाम में उतनी शक्ति है, तो एक नाम भी सुन सकते हैं. सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बोलते हैं ना, एक्चुअली सिंपल थिंकिंग हाई थिंकिंग. पहले सिंपल थिंकिंग, इतना सोचे सिर्फ कि तुम्हें सिर्फ एक मंत्र को सुनना है, या वो भी नहीं कर सकते, एक नाम सुनना है. और इसके बाद यदि मन भटकता भी है तो जैसे यतो यतो निश्चलति मनम चंचलम अस्थिरम, घसीट के वापस ले आए. किस पे? इस पे ले आए. कौन से नाम पे? एक नाम पे. वो जो एक नाम जो अभी सुन रहे हैं, बस घसीट के लाए डेलिबरेटली. अगर ऐसे भी कर सकते हैं, गलत नहीं है. जैसे प्रभुपाद बोलते हैं डू द नीडफुल, जो भी घसीट के लाए गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा पब्लिक में नहीं, खास करके यात्रा वगैरह में जाते समय ना करें. और चाबी पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग. पांचवी चाबी यह है कि भूतकाल से विरक्त होते हुए जप करें. अभ्यास एनस्त कौन तय वैराग्य न सोचते. 15 माला हो गई आपकी, 107 जप हो गया आखिरी माला का. सारा घटिया था, गंदा था, जघन्य जप था आपका, तो भी आपके पास अब एक नाम बचा है. उस नाम को अच्छी तरह जपें, क्योंकि वो एक नाम काफी है. क्या महाराज खटवांग जैसे एक मुहूर्त मिला था, उन्होंने भगवत नाम का जप करते हुए उनको भगवत प्राप्ति हो गई. और श्रील प्रभुपाद बताते हैं डेथ मे कम एट एनी मोमेंट, प्लीज चैंट अटेंटिवली हरे कृष्ण मंत्र. डेथ में कम एनी मोमेंट, हो सकता है कि अगला क्षण हो हमारा. जैसे कि हम सिक्स सेशन वगैरह में बताते हैं लोगों को, ऐसा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यू भक्तों के लिए है, हम भी न्यू भक्ता से हैं, कि आप देखिए कि फ्रूटी के पैकेट में लिखा है एक्सपायरी डेट एक्स मंथ्स. नया नया फ्रूट पैकेट जो आता है उसमें भी लिखा है, जूस में लिखा है, या जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट है, बेस्ट बिफोर 6 months, एक्सपायरी डेट तथाकथित। आपके स्लीव पे चेक करो एक बार, एक्सपायरी डेट है क्या? है नहीं है? डिफरेंस इतना है, डिवोटी क्राउड में लोग चेक नहीं करेंगे, उनको पहले ही पता है, नहीं है। न्यू बक्तास को बताएंगे या टू बी बक्तास को बताएंगे और बक्तास इन प्रोसेस को बताएंगे तो वो लोग एक बार चेक कर लेंगे, इतना है डिफरेंस है। लेकिन तभी भी हम ये भूल जाते हैं कि द ओनली रियलिटी इज डेथ, और उसके लिए हम कर रहे हैं अंते नारायण स्मृति। क्यों बता रहे हैं कि ये प्रश्न आचार्य उठा रहे हैं कि आसन्न मृत्यु की अवस्था पे अजामिल जप कर रहा है तो जीवित अवस्था में कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान को संकेत देते हुए दृढ़ता पूर्वक जप करता है तो उसको क्या लाभ प्राप्त होगा। तो स्वयं को भी प्रचार करें और अन्यों को भी प्रचार करें कि इस हरिणा में इतनी शक्ति है, इसका लाभ उठाया जाए। हरे कृष्ण। अपना आदमी है, लास्ट तक किसी ने ताली नहीं बजाया, मैंने बोला था दामोदर सुन पो ताली बजाओ। कोई प्रश्न किसी का, समय है तो? यस करुणा चंद्र प्रभु। श्रद्धा नामाबास भी, हाँ नहीं, श्रद्धा नामाबास कृष्ण प्रेम दे सकता है। वो तो अन्य जो नामाभास है वो तो पाप क्षय कर सकता है। श्रद्धा नामाभास व्यक्ति को भगवत भक्ति प्रदान कर सकता है और चार प्रकार की जो विविध मुक्तियां हैं वो भी प्रदान कर सकता है। कृष्ण प्रेम देने में सक्षम है क्योंकि शुद्ध नाम तो हर व्यक्ति जप नहीं कर सकता। यहां तक आचार्य बताते हैं कि अजामिल बिना गुरु का भगवत प्राप्ति कर ले तो क्या हर व्यक्ति यह समझ ले कि गुरु लेने की क्या जरूरत है? सोच सकता है ना कोई व्यक्ति, नामाबास से वैकुंठ प्राप्ति हो गई, भगवत सानिध्य मिल गया, विष्णु तो शिक्षा करो थे, वह एक तरीका है। दूसरा हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति अगर ये बोलेगा कि अजामिल को भगवत भक्ति मिल गई, भगवत सानिध्य मिल गया, इस बल पे मैं बिना गुरु के सिर्फ नाम जप करने से भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करूंगा तो यह तीसरा नामापराध हो जाता है और उसके निवारण के लिए अगला जन्म आना पड़ता है और प्रामाणिक गुरु का अनुगति लेते हुए भगवत भक्ति के अनुशीलन करते हुए हमें भगवत सानिध्य प्राप्त होता है। जब तक मेरी समझ है कि श्रद्धा नामाभास, इसलिए यह अंतर है, अन्य नामाभास जो है भगवत प्रेम नहीं दे सकते, अवश्य मुक्ति तक दे सकते हैं लेकिन श्रद्धा नामाभास जो है भगवत प्रेम तक दे सकता है, यह अंतर है। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी देख लेता हूं, हो सकता है मैंने कुछ गलत बता दिया। यहां पे हरिदास ठाकुर ने हाँ ये बताया कि उन्होंने संपुष्ट किया है कि मात्र भगवान के दिव्य नामों का जप करने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है यदि वो अपराध रहित जब भी पूर्णतया ना करें, कंप्लीटली इनऑफेंसिवली। हो सकता है बीच बीच में अपराध जब भी हो तो भी उसको मुक्ति मिल सकती है, हरिदास ठाकुर ने बताया है। तो फिर श्रद्धा नामाभास में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, क्या डिफरेंस है? ये मिल सकता है, भगवत भक्ति मिल सकती है, एब्सोल्यूट सेसेशन। ऐसा बताते हैं लेकिन नामाभास के गुणगान में, गुणगान के संदर्भ में मैंने जो सुना है कि श्रद्धा नामाभास जो है शुद्ध भक्ति अर्पित कर सकता है व्यक्ति को। वी कैन चेक शास्त्र मेबी आफ्टर क्लास, हो सकता है मैं गलत हूँ बिकॉज यहाँ पे आप सब मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो तो हो सकता है मैंने गलत किया। लेकिन जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है श्रद्धा नामाभास कैन बेस्टो इवन लव ऑफ गॉड बिकॉज शुद्ध, एक्चुअली स्पीकिंग शुद्ध नाम एक प्रकार से बताते हैं विल बी चैंटेड एट कृष्ण प्रेम स्टेज बिकॉज एट भावा स्टेज ऑल्सो देयर आर ट्रेसेस ऑफ रजोगुण. बताया गया कि भरत महाराज के साथ वो हुआ था इंटरनली, ऐसा नहीं कि वो अपराध कर रहे थे. कई लोग बताते हैं भक्तों के संग नहीं था इसलिए अपराध किया. कई लोग बताते हैं कि सटल लेवल पे थोड़ा ट्रेस ऑफ रजोगुण था, सतोगुण था, सॉरी नॉट रजोगुण, सतोगुण था, जिसकी वजह से वो हिरण के प्रति आसक्त नहीं हुए थे, अनुकंपाशील हो गए थे एक प्रकार से. तो वो सतोगुण की वजह से होता ना. तथाकथित जीवेर दया विथआउट कृष्ण भक्ति. तो इसलिए सूक्ष्म स्तर पे वो बना रहता है. शुद्ध नाम के स्तर पे गुणों के परे हो जाता है ना व्यक्ति. तो इस प्रकार इसको समझ सकते हैं. दूसरा अन्यत्र ये भी बताया गया कि अजामिल को ये अवसर कैसे मिला. कई लोग बताते हैं कि अन्यत्र किसी पुराणों में वर्णित है कि पिछले जन्म में दो ब्राह्मण मित्र थे और अजामिल जो ब्राह्मण था उसके मित्र की पुत्री ने उसको अंग संग दिया जब उसको बहुत घोर बुखार चढ़ा था, ज्वर चढ़ा था, और जिसे मुक्ति के लिए वो ठंड को कम करना था, शरीर के कंपन हो रहे था उसके शरीर में, तो उसको अंग संग किया था. और फिर जैसे ही वो जागृत अवस्था में आया उसने उस स्त्री को शाप दिया कि तुमने मेरे ब्रह्मचर्य का अवहेलन किया है इसलिए तुम अगले जन्म में वेश्या बनोगे. और बताया जाता है कि उस स्त्री ने बताया कि तुमने मुझे शाप दिया है लेकिन अगले जन्म मैं ही तुम्हारे मुक्ति का कारण बनूंगी, ऐसा बताया जाता है. तो एक आखिरी प्रश्न ले सकते हैं. वी कैन चेक दैट आउट करना चाहता हूं. माय अंडरस्टैंडिंग इज बिकॉज ऑफ दिस देयर हैज टू बी अ डिफरेंस, बिकॉज इफ एट भावा स्टेज इटसेल्फ समबडी कैन फॉल डाउन लाइक भरत महाराज, सो देन ही कुड नॉट हैव बीन चैंटिंग शुद्ध नाम. देयर वुड हैव बीन सम ट्रेसेस लाइक अपराध आभास, दे से दैट आल्सो हैपेंस एट भाव. भाव के स्तर पे अपराध नहीं होते, अपराध आभास रहता है. जैसे थोड़ा कर्पूर को निकाल देता थोड़ा सुगंध रहता है वैसे. इट्स मोर लॉजिकल देन एनीथिंग. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के विश्व हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ के निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे.